पूछना चाहिए,
बाहर आना चाहिए,
आनी चाहिए।
नहीं आता है, नहीं आता है तो वो अंदर चौड़ा हो सकता है,
सिर्फ समझने के आधार से कि भाई
चौड़ा नहीं होना चाहिए।
जितना जितना मैं अभी
आखिरी तो एक कंट्रोलर दुनिया में होगा या नहीं होगा,
एक तो होगा ही होगा,
अब जब हमें मालूम है कि एक होना ही होना है तो हम पहले से ही क्यों मसाला बना ऐसा बोल रहे हैं जिससे हम कहीं गोचा न खा दें।
तो मुरली का अभियान अभी जो मैंने किया उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे राम शिव बाबा को कहते हैं राम परम पिता परमात्मा।
जब राम शिव बाबा को कहते हैं तो उसमें बाबा भी है और शिव भी है, शिव माने बिंदी भी है, बाबा माने शरीरधारी भी है, तो वो तो राम है। मेरा एक नाम है शिव, वो कभी बदलता नहीं, वो फिक्स नाम है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते
हैं
तो
नाम भी बदलता
है, तो राम नाम भी बदल जाता
है, नाम भी बदल जाता है।
वही मैं
बड़ी
राम बाप है, ये पांच महावाक के माँ बाप, राम बाप है, मुरली के माँ बाप है, राम शिव बाबा है, राम परमपिता परमात्मा है,
शिवराम है,
राम भगवान है और राम ईश्वर है। ये पांच महावाक के मेरे पास मुरली में है, बराबर है,
एक ही बात,
तो ये एक ही बात होगी सब। अब ये
राम है, बाबा जी है मुरली में, शिवराम है।
अब ये पांच चीजें जब मुरली में आती हैं तो हमारे लिए ये पांच चीजों का अर्थ जो मैं निकालता हूं कि राम की निराकारी स्टेज जब 100% शिव समान हो जाती है तो शिव और राम में अंदर अंतर में कोई अंतर
शिव शंकर को मिला के एक
है। तो मतलब शिव और राम में कोई अंतर कोई बता नहीं सकता कि ये शिव है कि राम है, तब हम ये क्या पांचों टाइटल जो है वो राम की निराकारी स्टेज को, क्योंकि हमने शिव को देखा नहीं, अच्छा सॉरी हमने शिव को देखा नहीं बाबा, तो हमने जब शिव को देखा नहीं,
हमारे अपनी आत्मा में दिखाई पड़ता,
हाँ, तो हम राम की निराकारी स्टेज को अगर ये सब समझते हैं कि ये पांच जो स्टेज है वो राम की निराकारी स्टेज, अब राम मतलब परमात्मा हमारे लिए परमात्मा हो गया,
आपके लिए परमात्मा, हम नहीं चाहते कि आपके लिए परमात्मा,
हमारे लिए
परमात्मा परम पांडधारी के रूप में परमात्मा कहें ठीक, लेकिन हाँ, परम पिता नहीं हुआ
परमात्मा हमारे लिए राम जो हो गया वो ईश्वर का साकार रूप हो गया। तो क्योंकि मुरली में बोला है कि राम के लिए बाबा शिव है और बाकी के लिए बाबा हमारे लिए राम वाली आत्मा, जब 100% निराकारी स्टेज पहुंच जाती है राम शिव बाबा का रूप बन जाता है तो वो शिव बाबा हो जाता है। तो जब राम शिव बाबा हो जाता है तो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन एक ही आता है कि राम जब शिव बाबा हो गया तो फिर भारत कौन है, क्योंकि मुरली में
जो भारत सबसे पतित बनता है, जो भारत सबसे पावन बनता है वो शिव तो न पतित बनता है न पावन बनता है।
हाँ शिव तो पतित
तो उसकी बात ही नहीं है।
तो राम जब ये तन के अंदर जब राम 100% निराकारी पहुंच जाता है तो ये तन जो है ये तन का मालिक कौन हो जाता है, क्योंकि जब तक ये तन का मालिक कोई और
शिव शंकर एक हो जाता है, बाप आकर इस सृष्टि पर आप समान बना देता है।
बाबा इनको भारत के बारे में पूछना है, बहुत कंफ्यूज होता है,
सबसे जास्ती पतित होता है जो सबसे जास्ती पावन होता है।
नहीं बाबा
वही मानने को
वो नहीं
कौन है,
मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तन के अंदर तीन कार्य कर रहे हैं,
कार्य जो कर रही है उनमें ऊपर पावर ऊपर के कौन काम कर रहा है,
एक वो डायरी रखी
उनमें ओवर पावर ऊपर के कौन सी आत्मा काम कर रही है,
तीन
कार्य कर रही है लेकिन तीनों आत्माओं का ऐसे समझे कोई बात
नहीं। बाबा मेरे को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं अपना ये पूरा बचपन से आदत है कि कोई भी चीज है ना मैं चित्रों के द्वारा अपने आ जाओ दीपक भाई इधर आ जाओ, ये शिव राम और कृष्ण, अब ये तीन आत्मा में शिव ने जो कुछ बोलना था वो दादा लेखराज के तन से शिव ने बोल दिया, उसको मुरली कहते हैं हम, कागज की मुरली, ये मुरली के मावा अब ये मुरली के महावाक्य का मेरे को कंफ्यूजन है कि ये मुरली के महावाक्य का एक्सप्लेनेशन जो है हेलो क्या
लिमिट है वो दूसरे नेत्र ने कुछ लिमिट लगाई होगी कि कब तक ये पतित है
लेकिन
हमारी बात कब
आपके जवाब का सीधा सवाल जो आज है कि मैं राम की आत्मा को पतित समझता ही नहीं
हूँ क्योंकि राम बाबा आप पैतरीबाजी कर रहे
हैं नहीं तो मेरे को प्रूफ बता दीजिए मैंने साइन वालों से पूछा सबसे पूछा मैंने बोला मेरे को इस जन्म में प्रूफ बताइए कि राम की आत्मा पतित है
देखो ये बात हमने आज से 8 साल पहले एक वीरभद्रप्पा भाई था उससे सुनी थी शिव अलग से कोई चीज नहीं है जो राम वाली आत्मा है वो ही पुरुषार्थ करके भगवान बन गया
मैं भी यही मानता हूँ मेरे लिए राम बाबा है
आपके लिए ये है उनके लिए वो है उनके लिए वो है उनके लिए ऐसा है उनके लिए वैसा है ये टुंडे टुंडे मतलब भिन्न वाली बात हो जाए सुनो
अच्छा
हमारी बात सुन लो हमारा अनुभव सुन लो हमें जो सच्चाई मिली है बाबा ने जैसे बोला यज्ञ के आदि में पूरा ध्यान नहीं था सामने आया ही नहीं इसलिए राम वाली आत्मा किरण के लिए अभी ज्ञान का सारा भंडार आ गया मुरली से माँ के रूप से सारा ज्ञान का भंडार आ गया तो ज्ञान का जो भंडार आया वो ग्रास पर राम वाली आत्मा ने ब्रह्मा के थ्रू किया या अपने आप किया
राम वाली आत्मा ने मुरली का अध्ययन करके जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा
आकर आधार लिया ना किसी
मुरली का अध्ययन
जो भी आधार लिया हाँ, जो भी आधार लिया वो आधार किसका लिया वो मुरली कहाँ से आई
वो शिव की मुरली
शिव की तो है
हाँ,
तो
ब्रह्मा तन द्वारा हाँ ब्रह्मा तन द्वारा
लेकिन प्रैक्टिकल निमित्त कौन बने
ब्रह्मा का तन निमित्त बना
ठीक है तो जो ब्रह्मा का तन निमित्त बना और उसमें शिव सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया तब मुरली चली नहीं तो मुरली
नहीं तो 47 से मुरली नहीं चल सकती
अच्छा अब उस मुरली को ग्रास्प करने के लिए कोई आत्मा तो निमित्त होगी जो उसको पूरा ग्रास्प कर सके जिसको टीचर के रूप में शिव बाबा प्रत्यक्ष रूप में होते वो बाप भी है वो एक ही तन टीचर भी है वो एक ही तन सदगुरु भी है एक ही शरीर के द्वारा ब्रह्मा के शरीर के द्वारा नहीं वो बाप से सदगुरु है वो माँ है माँ के द्वारा गीता ज्ञान आया अमृत नहीं आया मंथन नहीं आया तो जब मंथन आता है तब वो टीचर भी है वो बाप भी है वो सदगुरु भी है अब जब ये तीनों बातें ये शरीर के द्वारा आ जाती है प्रत्यक्ष हो जाती है तो ये साबित हो जाता है कि राम वाली आत्मा अपना पुरुषार्थ करके शिव नहीं बन जाती अल्पकाल के लिए थोड़े समय के लिए संसार में दिखाने के लिए कि हाँ कोई बाप समान भी बन सकता है थोड़े समय
वो सदाशिव हो जाता
है हाँ बाकी 5000 साल जो है वो राम वाली आत्मा एवर प्योर बन करके रहे ये संभव ही नहीं है
संभव ही नहीं ये बात मैं एक्सेप्ट किया पूरा
तो 5000 साल तो राम वाली आत्मा ही शिव है ये बात राम हो जाती है
हाँ, तो अब मेरे पास जो कुछ थोड़ी बहुत दलील है वो मैं आपके सामने 1969 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा और सारी मुरलियां शिव की लिखित फॉर्म में आई वो लिखित फॉर्म में 1969 या समझो 1970 से वीरेंद्र देव दीक्षित ने पढ़ना शुरू की और वो इस
पढ़ने वाले बहुत थे
हाँ नहीं नहीं उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया
अपने अपने तरीके से
हर आत्मा ने ये और खास करके श्री वीरेंद्र दीक्षित जब सीन पे आए तो उन्होंने जब ये पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले इस मुरली को पढ़ने के बाद सबसे पहले कौन सी सोच को रियलाइजेशन हुआ कि मेरा पार्ट राम का है जिसने पढ़ना शुरू किया वीरेंद्र देव दीक्षित का तन उस समय राम वाली सोल चला रही तो राम वाली सोल ने 1970 से लेकर 73 तक जो पढ़ना शुरू किया उसका प्रूफ है मुरली में कि 73 में आया कि बाप वानप्रस्थी हो गए और आज से जो काम बाप का था वो बच्चे का हो गया। तो 70 और 73 के बीच में ये 3 साल वीरेंद्र देव दीक्षित बाप अव्यक्तवाणी 73 की अव्यक्तवाणी में आया। हाँ, तो यही मेरे को पूछना है कि इस 73 में सबसे पहली बात तो 73 में जब राम बाप को, राम वाली सोच को जब अपना पता पड़ा कि मेरा ही पार्ट परमात्म पार्ट है या मेरा ही पार्ट है निराकारी अवस्था को 100% प्राप्त करना, तो उसको वो अवस्था प्राप्त करने से पहले साकारी से उसको आकारी होना पड़ा। सॉरी बाबा, मैं क्या है वो प्रोफेसर रह चुका ना, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए ना थोड़ा सा। अच्छा, तो ये निराकारी अवस्था प्राप्त करने के लिए राम वाली सोल को आकारी बनना पड़ा, वाणी से परे जाना पड़ा, क्योंकि साकारी से राम वाली सोल आकारी नहीं, निराकारी नहीं बनता। तो 73 से ब्रह्मा ने एक अवैध वाणी में इशारा दे दिया बच्चों को कि बाप वानप्रस्थी हो गया। अब मेरे को ये पूछना है कि ये इशारा कौन से बाप की तरफ था? ब्रह्मा जो माउंट आबू में जाके इशारा दे रहा है तो शिव तो वाणी से परे हो नहीं सकता, तो वाणी से परे राम बाप हो गया उस दिन, और उसने उस दिन अपना स्वयंभू का जन्म ले लिया, अपना स्वयं जन्म ले लिया। स्वयं जन्म लेने का मतलब है उसने मुरली के आधार से अपना स्वयं पार्ट पहचान लिया कि मेरा राम का पार्ट है। इसलिए तो राम ही जब अंत में शिव पुरुषार्थ करके 73 से लेकर 2009-10 तक या जब भी आगे चल के जब वो पूरा निराकारी स्थिति को प्राप्त कर लेगा तब वो स्वयं को कहलाएगा। उसने थ्योरी में पहचान लिया कि मेरा पार्ट राम शिव बाबा है।
कब तक के लिए
स्वयंभू? मतलब जब वो उसकी शिव की जयंती होगी। अंत ने क्या बोला है, अंत में मुरली ने बोला है कि शिव जयंती सो कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। तो ये तीनों जयंती जब अंत में 2010 बोलो या 2000 जब भी बोलो, उस समय जब राम 100% निराकारी स्टेज का हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि शिव की जयंती हुई, क्योंकि हम बिंदी की जयंती कभी मना ही नहीं सकते।
लेकिन लास्टिंग शिव तो नहीं,
हमारे लिए तो पुरुषोत्तम संगम युग जब बनेगा इस दुनिया के लिए तो हमारे लिए, हम बच्चों के लिए वो एवर लास्टिंग शिव हो गया। हमारा बाबा
भी एक सीधी सी बात ही है, राम वाली आत्मा ने जो मनन चिंतन मंथन भी किया उसके लिए कोई आधार लिया कि नहीं लिया, और जो आधार मुरलियों का लिया वो मुरलियां चलाने के निमित्त कौन बना? ये निमित्त वाली बात जो है ना, ये हमेशा डाउन करती है, आज न समझ में आने की वजह से। ब्रह्मा बाबा ने भी सिर्फ इतना ही नहीं समझा कि हमारे साक्षात्कारों का अर्थ डिक्लेयर करने के लिए कौन निमित्त बना, वो ही हमारा सब कुछ है। इसलिए वो पूछा था, अगर ये बात उनकी बुद्धि में बैठ जाती निमित्त को मानना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा बाबा निमित्त बने, माँ की बुद्धि निमित्त बने। मुरली अगर उनकी तो गुरु शिव ने न चलाई होती तो ज्ञान देने वाला कौन, ब्रह्मा या सुप्रीम सोल शिव? सुप्रीम एसी, सुप्रीम एसी जो है आत्मिक रूप में शिव की है या राम की आत्मा की? राम की आत्मा जब सुप्रीम एसी होती तो पिछले जन्म क्यों फेल हो गया?
थोड़ा समय कि पूरे कल्प में सदा कायम एक शिव बाबा, पूरे 5000
वो इसलिए कहा कि जब से द्वापर द्वैतवादी युग शुरू होता है तब से वो आत्मा विधर्मियों से टकराते टकराते टकराते, जैसे अभी शूटिंग पीरियड में देखा जा रहा है, जब से आती है ज्ञान तब से लगातार टकराती 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 आखिरी जन्म तक भी टकराती है, और टकराते टकराते जब अति हो जाती है तब शिव को पुकारती है, और उसके पुकारने से ही शिव आ जाती है। तो शिव अलग तक तो है,
मैं इसको 100% मानता हूँ, वही मैं बताने जा रहा था कि शिव को मैं नकारता नहीं हुआ।
अब पुकारने वाला कौन है ये पूछो ना तो समझ में आएगा।
शिव को ये राम वाला सोल, राम वाली तन है, 84 जन्म वाली, और ये
तो सदा कायम रहते का मतलब, सदा कायम रहने का मतलब ये है कि गॉड इज गुड। ये क्रिश्चियंस में विशेष बोलबाला कहा गया है, गॉड इज ट्रुथ। हिंदू में भी बोला है सत्यम
शिवम
सुंदरम, सत्य को ही भगवान कहा जाता है,
सत्य ही शिव
भगवान कहा जाता है। तो उस आधार पर वो आत्मा अंत तक टकराते टकराते सत्य में पीछे नहीं हटती, झूठ को स्वीकार नहीं करती, इसलिए सदा शिव माना शिव बाबा सदा कायम है इसलिए। बाकी ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर सदा कायम है। सुप्रीम सोल तो बोल दिया, मैं बोल दिया, मैं तो 5000 वर्ष के बाद जाकर के साक्षी होकर के बैठता हूँ, शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और तुम तो बच्चे रामकृष्ण की आत्माएं साथी हो जाएंगे, बाप दादा साथी हो जाएंगे। या तो आपको मुरली माननी पड़ेगी या तो आपको अव्यतवाणी माननी पड़ेगी, दोनों मानेंगे तो
ये तो बोले राम और कृष्ण धूल चाटते
हैं।
तो क्यों बोला
क्या
राम और कृष्ण धूल चाटते हैं?
धूल माने दे वो तो 500 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है सब कुछ न कुछ आकर के संकीर्ण में लग जाती है, एक अलग बात। चाटना अलग बात, देह अभिमान में आ जाना, 5 विकारों को भोगना एक अलग बात, लेकिन झुक जाना ये एक अलग बात।
अच्छा,
असत्य के साथ।
अच्छा ठीक है, मैं इसको दूसरी तरह से कुछ और करता हूँ कि अगर मैं समझो शिव बिंदी के प्रति मैं कोई प्रीत चुका नहीं पा रहा हूँ,
प्रीति नहीं होती है बिंदी के साथ,
तो
प्रीति है, ये गलत बात है।
प्रीति शरीर से
शरीर के साथ,
तो अगर
शरीर होगा तो प्रीति होगी, शरीर होगा तो घृणा होगी, शरीर होगा तो दुश्मनी होगी। शरीर नहीं है
तो कुछ भी नहीं,
स्वार्थ बिना रथ के कैसे कुछ भी हो सकता है?
तो वही शिव बिंदी को के इस शरीर के अंदर भी अगर मैं शिव बिंदी के साथ प्रीत नहीं जुटा पा रहा हूँ, तो मैं अगर सिर्फ राम की निराकारी स्थिति को शिव मानकर उस राम के साथ, जिस राम के साथ मुझे 84 जन्म बिताने हैं, अगर मैं उसको याद करूँ तो मेरा क्या नुकसान है?
नुकसान ये है कि तब तक हम साकार में निराकार को याद कर रहे हैं भी नहीं पाएंगे। बाबा ने जैसे बोले ना, तो ऐसे ही समझो ये ब्रह्मा नहीं तुमको डायरेक्शन देता है, ऐसे समझो ये ब्रह्मा नहीं बोलता है, तुम ऐसे समझो शिव बाबा ही
बाबा है।
तो शिव को याद रखेंगे तो तुम नीचे ही रहेंगे, तुमको क्या पड़ी है कि पतित को याद करो? पतित को क्यों देखना, सब को क्यों देखना, शिव को देखो ना, वो सबको भी चैतन्य बनाने वाला है, उसको हम क्यों देखें? हमें तो वो जो ढांचा है, ढांचा बनाया, उस ढांचे में चलाने वाला कौन है?
मैं उस ढांचे में चलाने वाले को, मैंने बहुत कोशिश की बिंदी को देखने की, लेकिन मेरे को राम की निराकारी अवस्था ही नजर आती।
तो फिर यही कहेंगे
मेरे को राम,
फिर ऐसे ही कहेंगे कि जैसे धर्म पिताएं हैं वो नहीं मानते हैं साकार को, अंत तक नहीं मान पाते, वो स्थिति होगी
साकार को। मैं तो साकार को
जो धर्म पिताएं हैं ना, वो साकार को नहीं मानते, नहीं मान पाते, इसलिए वो द्वापर युग में आते हैं, सत्युग त्रेता में नहीं आते।
तो मैं तो बिंदी को मान ही नहीं रहा हूँ, मैं तो राम की निराकारी स्थिति को भगवान मान रहा हूँ।
लेकिन आप उसे बुद्धि में बैठा हुआ पतित है।
नहीं
देखो देखो बुद्धि में बोला हुआ है, बाप को पतित समझने वाले
छोड़ने
नहीं,
माँ बाप के लिस्ट में नहीं,
माँ बाप की लिस्ट में नहीं। तो ऐसा हम आए जो बाबा की मुरली के वर्तला पात है, हम उसको स्वीकार क्यों करें? हम तो बाबा के लाडले बच्चे बनेंगे, माँ बाप की लिस्ट में हम क्या?
तो मैं भी तो वही बोलूँ कि मैं बाप को माँ बाप पते समझता ही नहीं, मैं तो बाप को
निराकार। अभी तो आपने बोला, आपकी बातें दो हो जाती है।
कैसे?
बोला कि आगे चल करके जब वो शिव समान हो जाएगा हम उस स्वरूप को याद करते हैं।
नहीं, मैं तो अभी भी उस स्वरूप को याद करता हूँ।
अभी याद है नहीं ना,
लेकिन मैं उसके जैसे बाबा आप बोलते हो कि इमर्ज करके है ना याद मोरी चलाते हैं, मैं भी राम की
इमर्ज करके मोरी चलाते का मतलब आत्मा इस संसार में थी तब इमर्ज हो रही है।
तो मैं
और आप तो वो अभी है ही नहीं,
राम की निराकारी स्टेज मेरे सामने नजर आती
है अभी तो नहीं है वो सदाकाल।
अभी होती तो शिव जयंती हो ही जाती,
अभी सदाकाल की निराकारी स्टेज अभी तो नहीं
है, नहीं
जो अभी नहीं है, लेकिन हम उसमें उस शिव तत्व को देखते हैं, हम उसको नहीं देखते।
देखने की दृष्टि बदली करनी है, देखने की दृष्टि बदली।
किसको देखते हैं? पढ़ाने वाला कौन है?
देखने की दृष्टि।
आपको जो एडवांस मिला है वो पढ़ाई किसने पढ़ाई? क्या हमारी आत्मा ने पढ़ाई या शिव सुप्रीम सोल ने पढ़ाई? टीचर कौन है हमारा?
शिव सुप्रीम
सोल आत्मा टीचर है या शिव सुप्रीम सोल टीचर है?
उनके जो वसंत है वो उनके जो
ब्रह्मा के द्वारा माँ का पार्ट बजाया शिव ने बजाया या दादा लेखराज ब्रह्मा ने बजाया? किसने बजाया?
शिव ने बजाया।
शिव ने बजाया।
शिव ने कैसे बजाया? लेकिन शिव को तो माँ की फीलिंग होती ही नहीं है,
वो तन के द्वारा तुम्हें व माता चपित उसकी होता है तू।
लेकिन को माँ की फीलिंग कैसे होंगी?
मुख लिया मुख लिया कि नहीं बोलना होगा।
शास्त्रों में जो गायन है ना वो इस समय की गायन, जो गायन चल रहा है तुम्हें व माता च पिता तुम्हें तुम शब्द जो है दाऊ एक के लिए उपयोग होता है, तुम युवाम और युवियम युवे माने तुम सब,
तुम सब
तो तुम शब्द जो आया हुआ है तुम्हें माता च पिता तुम्हें तो वो उस
तो ये बिंदी के लिए गायन
इंट्रोड्यूस किया नहीं, बिंदी के लिए गायन नहीं, वो बिंदी जब साकार बनती है उसके लिए गायन। हमारी दृष्टि जो है वो चैतन्य आत्मा की तरफ रहे, शरीर की तरफ नहीं। शरीर तो एक हाड़ मास का पुतला है, एक ढांचा है, जैसे बड़ी मम्मी है, बड़ी मम्मी तो ढांचा है बड़ी माँ का, लेकिन वो डब्बे में काम कौन करता है बड़ी माँ का? ब्रह्मा की सोल। तो ब्रह्मा की सोल वो सुप्रीमेसी है उसकी, उस तन में। हमें ब्रह्मा को अपनी माता के रूप में स्वीकार करना है, जो मुरली में बोला हुआ है ये वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्या माताओं की संभाल के लिए सरस्वती और ओमरादेव को निमित्त बनाया हुआ है। तो वास्तव में हमारी माँ तो जगदम्बा है, कौन? ब्रह्मा। लेकिन तन पुरुष का है इसलिए पूजी नहीं जा सकती, क्योंकि दुर्योधन तो शासन की लिस्ट में, वही जब शरीर छोड़ देता है माँ के चूल्हे में प्रवेश करता है तो संसार में पूजा भी जाता है। ऐसे ही शिव, हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए, हम शिव ज्योति बिंदु से सुन रहे हैं जिसका नाम कभी बदलता नहीं, वो सदैव कल्याण का, राम वाली आत्मा कल्याणकारी भी हो सकती है, हिंसक युद्ध करती है द्वापर युग में कलयुग में विधर्मियों के साथ तो अकल्याणकारी है, कल्याणकारी। हिंसा बाबा ने कब सिखाई? सिखाई कभी? कभी नहीं सिखाई।
शिव को तो मंथन की दरकार नहीं रहती,
शिव को मंथन की दरकार, वो तो असोच है।
तो फिर ये मंथन जो हुआ ज्ञानामृत, ज्ञानामृत
तो मंथन करती है रामकृष्ण की आत्माएं मंथन करने वाली हो सकती है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की आत्माएं मंथन करने वाली हो सकती है, बाकी शिव से गुरु मंथन करने की क्या दरकार?
जो एडवांस है बाबा, जो ज्ञानामृत है वो तो मंथन है, वो तो राम का मंथन हुआ
है। काम है तो वो तो मनुष्य आत्मा
मनुष्य आत्मा ने किया ना,
वो तो देवताओं और असुरों ने मंथन किया ना, कि भगवान ने मंथन किया
तो वही तो मंथन राम। अगर राम कृष्ण की आत्मा मंथन करके हमको ये एडवांस नॉलेज दे रही हैं,
वो नहीं देने वाली,
तो फिर
वो नहीं देने वाली।
तो शिव अगर
सुनो सुनो, मुरली में जो बोला वो मंथन किया किया हुआ बोला, मुरली माना वेद वाणी,
मुरली की बात की हो रही है, ये एडवांस नॉलेज की बात
हमें, एडवांस नॉलेज निकली कहाँ से?
तो मुरली का जो क्लैरिफिकेशन अभी निकल रहा है वही दीपक भाई बोल रहे हैं कि अगर वो रामकृष्ण की आत्मा दे रही है, अगर वो रामकृष्ण
नहीं,
अच्छा तो वो शिव
में ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है,
तो ये सुप्रीम परमात्मा शिव बिंदी दे रहा है,
वो शिव सुप्रीम को उसमें बाप के रूप में प्रवेश करता है।
हाँ,
तो संघ के रंग से जो निराकारी स्टेज बनती है वो निराकारी स्टेज मंथन कराती है राम की आत्मा,
राम की आत्मा की निराकारी स्टेज मंथन कर
संघ के रंग से,
संघ के रंग से ये एडवांस नॉलेज दे रहा है
राम की आत्मा शिव सुप्रीम सोल के संघ के रंग से जो निराकारी स्टेज बना लेती है।
हाँ,
तो जितना ही निराकारी बनेगा,
हाँ,
जितना ही सूक्ष्म बनेगा उतना ही विस्तार स्वतः ही होता है।
हाँ, तो इसका
जैसे,
मतलब
जैसे बीज है छोटा होता है, बरगद का बीज छोटा होता है लेकिन वो विस्तार भी हो जाता है, जितना छोटा उतना विस्तार, ऐसे ही यहाँ पर राम वाली आत्मा निराकारी स्टेज धारण करती है,
धीरे धीरे धारण कर रही है 73 से।
हाँ,
तो 73 से ही
73 से नहीं 69 से
जब से वो यज्ञ में आए थे, और जब से उनको रियलाइज हुआ कि मेरा राम का राम की आत्मा मैं हूँ, और
ये नहीं कहा जा सकता उसका रियलाइजेशन कब से हुआ, रियलाइजेशन तो तब कहा जाएगा जब सारी दुनिया मान ले।
हाँ, वो तो सारी दुनिया, लेकिन बच्चों ने
ये वो बुद्धू बना ब्रह्मा बाबा ने कर दिया कि मैं कृष्ण की सोल हूँ, प्रूफ कुछ भी नहीं,
साक्षात्कार का प्रूफ
साक्षात्कार
में प्रूफ नहीं है,
स्वप्न और साक्षात्कार कोई प्रूफ नहीं होते,
नहीं उनके लिए वो प्रूफ रहा ना,
बुद्धिमान लोग बिना प्रूफ और प्रमाण की मानते नहीं है, तो जो साक्षात्कार है स्वप्न है वो उनके अपने लिए है,
उनके लिए प्रूफ,
दुनिया कोई नहीं मानेगी,
दुनिया के लिए प्रूफ,
इसलिए वो कोई प्रूफ नहीं।
मतलब बाबा ये कह सकते हैं मंथन तो राम वाली सोल करती है, भगवान जन राम वाली सोल निकालती है, मगर तभी निकालते हैं जब इनका संग मिलता है,
जब शिव का संग।
हाँ, साई वगैरह तो हो ही नहीं सकता है,
जब निराकारी स्टेज बनती है,
मतलब ये निमित्त तो बनता है, मगर निमित्त बनाने वाला शिव ही है, ऐसे कह सकते हैं। ये बोलते हैं
आई कैनॉट अंडरस्टैंड दिस,
आपका कुछ पार्ट होगा इसलिए।
ये शिव है, ये राम है, अगर शिव इस राम को ऊपर खींच रहा है तो राम का अपना पुरुषार्थ क्या है? फिर
हमें
क्यों नहीं खींचा?
तो राम पार्ट है, हम ये क्यों नहीं सोचे?
वो नहीं जवाब दे पा रहे हम, बनी बनाई बन रही, अब तो सुबह
बनी
नहीं बन रही, मैंने 63 में जो अच्छे कर दिए हैं उस आधार पर, उस आत्मा को ये लिफ्ट कि और किसी में नहीं प्रवेश करता, वो उसी में प्रवेश।
तो शिव जो है वो राम का भी रचयिता हो गया, इसका मतलब
राम तो देहधारी का नाम है, शिव देह को नहीं रचता है।
नहीं नहीं, राम तो
आत्मा को भी नहीं रचता,
राम वाली सोल।
शिव रचयिता नहीं है, रचयिता और रचना का संबंध साकार में होता
है।
शिव को रचयिता नहीं कहेंगे, आत्मा को रचयिता नहीं कहेंगे। आत्मा जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक रचयिता भी नहीं और रचना भी नहीं।
अच्छा बाबा, ऐसा कह सकते हैं ब्रह्मा बनाम कृष्ण, तो राम बनाम शिव
बना बनाम नहीं,
क्या क्या बोले
उर्फ और बनाम सेम ही है।
अच्छा उर्फ, उर्फ हाँ उर्फ बात होती है, उर्फ और बनाम एक ही बात है,
उर्फ कृष्ण
विरोध में भी आ जाता है,
बनाम विरोध को भी बोलते हैं, अपोजिट वर्सेस।
हाँ, वो जो कुश्ती लड़ते हैं उसको बनाम बोलते हैं हिंदी में,
उर्फ माना
उर्फ मतलब वही वही पार्ट है।
हाँ, ब्रह्मा उर्फ कृष्ण और राम उर्फ शिव, राम उर्फ शिव,
राम शिव
उर्फ बोले तो वही हो गया।
शिव मेरा नाम शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं, मुझे बोला कि नहीं
बोला,
मेरा नाम शिव ही है, शिव माना कल्याणकारी, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं
तब
तो नाम, राम के शरीर में प्रवेश किया तो नाम बदल गया, ब्रह्मा के तन में दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया तो नाम बदल गया,
राम तादाद में शिव बनता है।
दादा लेखराज के तन में शिव का नाम कैसे बदल गया?
ब्रह्मा हो गया,
ब्रह्मा हो गया, और राम के तन में
शंकर हो गया।
शंकर को तो बोलते हैं तीन आत्माओं का पार्ट है,
तीन आत्मा शंकर तभी होता है जब उसमें तीनों आत्माएं मिक्स हो जाती है। शिव को ब्रह्मा से अलग किया ही नहीं जा सकता, शिव छोड़ने पर जो ब्रह्मा की सोल है वो कृष्ण की सोल अभी भी शिव से ही पढ़ाई पड़ती है, अभी भी संपन्न नहीं है, अभी भी सूक्ष्म शरीर के बंधन में।
अलग नहीं किया जाते बाबा बोलते हैं, अलग नहीं किया जाते बाबा बोलते हैं, मगर वो तो मानता ही नहीं कि गीता का भगवान खुद को समझ रहे हो।
63 जन्म गीता का भगवान चलता चला आया,
समय तो लगेगा
उस व्यक्तित्व के सामने ही तो ये हुआ ना सारा, सोल वही है और सारी दुनिया ने गीता का भगवान कृष्ण को माना, वो सुन रहा है समझ रहा है, हो सकता है कि उस आत्मा ने ये प्रभुगंडा भी सबसे जास्ती किया हो, तो 63 जन्म की जो रंग भरी हुई है वो एकदम कैसे निकल जाएगी, टाइम लगेगा। जिस क्षण ये बुद्धि में बैठ जाएगा कि गीता का भगवान वो यज्ञ के आदि वाला प्रजापिता था, जो आदि में है सो ही अंत में है,
समझने लगा था ना, 66 में समझने लगा था ना,
वो नहीं समझ।
तो बाबा ऐसी बात,
शिव सुप्रीम सोल ने उनके तन के द्वारा बोला, वो नहीं समझने लगे
कि आने वाले 10 वर्षों में लक्ष्मी
नारायण, वो नहीं समझने लगे,
विनाश होगा
पहले वाली
में, पूरा नंबर राज्य होगा,
वो नहीं पूरा समझने लगे।
जब मम्मा सरस्वती चली
गई, उन्होंने करेक्शन किया कि प्रजापिता शब्द जोड़ो, फिर भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने प्रजापिता अपने नाम के आगे फिर भी नहीं जोड़ा,
बोल्ड में तो लिख दिया लेकिन जोड़ा नहीं,
हाँ नहीं जोड़ा,
जोड़ा
बाबा। इनको कंफ्यूज है कि भारत कौन है,
मैं अपना कंफ्यूजन गावा सकते हैं। शिव शिव का मन ब्रह्मा, शिव का मन ब्रह्मा यानी कृष्ण की सोल, शिव का मन मन रूपी ब्रह्मा बोले जाता है।
मन शिव को नहीं होता, मन नहीं चला, मन, मन उसी कहते हैं
मन रूपी ब्रह्मा,
मन उसी कहते हैं जो मनन चिंतन करे। शिव मनन चिंतन करता ही नहीं,
करता ही
नहीं, इसलिए उसका स्वरूप मन नहीं है कभी।
नहीं
आज भी मनन चिंतन नहीं करता, पहले भी मनन चिंतन नहीं करता था, और आगे भी कभी उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं।
जैसे हमको एडवांस नॉलेज में पढ़ाया गया है, जैसे आत्मा में मन बुद्धि संस्कार होते हैं, वैसे परमात्मा के मन बुद्धि संस्कार है।
जैसे हम परमात्मा कहते हैं, वो व्यक्ति बदल जाता है, व्यक्तित्व बदल जाता है। परम पिता अलग और परमात्मा अलग, हमेशा परम पिता पहले, परमात्मा बाद में। तो परमात्मा शब्द कहा गया है हीरो पार्टनर
बराबर है। तो परम पिता हो गया शिव बिंदी, और परमात्मा हो गया राम की निराकारी स्टेज, परमात्माओं के मुकाबले।
परमात्मा जो है वो हो गया,
राम की और आत्मा हो गई।
परमात्मा वो हो गया जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर समय,
हाँ,
5000 वर्ष में भी और शूटिंग पीरियड में भी,
हाँ,
हीरो पार्ट ही बजाता है। आप भले उसको नीच पार्ट समझे,
हाँ,
लेकिन वो हमेशा ही हीरो पार्ट बजाता
है। तो राम हो गया वो वाला सोल जिसको परमात्मा बोल दो, जो परम, जब राम की निराकारी स्टेज 100% बन जाती है तो वो परम पिता परमात्मा
वही पहुंच जाते हैं। बन जाती है नहीं, जो आदि में होती है वही अंत में होता है।
वही जो आदि में होता है, तो वो जब परम पिता परमात्मा कम्बाइंड हो जाता है।
जब समय 36 में आया था, क्लैरिफिकेशन दिया था, उस समय भी निराकारी स्टेज थी। ज्ञान में जब आता है, बेसिक नॉलेज में जब आता है, तब भी वो निराकारी स्टेज प्राप्त करता है, और जब एडवांस में पक्का होता है तो भी निराकारी स्टेज में ही प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने। ये निराकारी स्टेज ही ब्राह्मण बच्चों के सामने भी प्रत्यक्ष कराती है, और सारी दुनिया के सामने ही वो निराकारी स्टेज प्रत्यक्ष कराएगी।
तो वही कम्बाइंड परमपिता परमात्मा का रूप हो जाएगा। तो जब परमपिता परमात्मा का कम्बाइंड रूप हो जाएगा, और राम वाली सोल शिव के एक साथ जुड़ के
परमपिता का मतलब ही है शिव,
हाँ वही। तो राम और शिव जब कम्बाइंड होकर परमपिता परमात्मा हो जाते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर प्रजापिता कौन है जिसमें वो आके प्रवेश करेगी? कैसे राम वाली अपना को आपने परमात्मा भी बना दिया, आपने प्रजापिता भी बना दिया।
राम माना ही बाप और कृष्ण माना ही बच्चा, मुरली में बोलते
हैं। हाँ ठीक है,
हाँ, हाँ। तो बाप जो है वो बाप का ही पार्ट बजाता है, ये क्योंकि आदि में भी बाप था, मध्य में भी बाप है, और अंत में भी संसार का बाप बन के प्रत्यक्ष होगा।
निराकारी बाप की साकारी बाप,
मनुष्य सृष्टि का बाप जब कहा जाएगा तो साकार हो जाएगा, तो और आत्माओं का बाप जब कहा जाएगा तो निराकार हो जाएगा। बिंदु बिंदु आत्माएं वो शिव के लिए इंट्रोड्यूस करती है, और साकार जब कहा जाएगा तो मनुष्यों का पिता होगा, मनुष्यों का पिता राम है, अब उसे प्रजापिता कहो, इसलिए तो मुझे बोला हुआ है।
लेकिन प्रजापिता
नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। ये क्यों बोला? इसीलिए बोला कि जो नारायण है वही कृष्ण है और वही प्रजापिता है, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर।
लेकिन मुरली में तो कहीं भी नहीं बोला कि राम नारायण बनता है, एक भी मुरली नहीं आई है।
आप कैसे राम राज नहीं है ना, कैसे में है
राम राज चलता है,
हाँ।
राम राज चलता है, हाँ। राम राज शुरू किसके द्वारा होता है?
राम राज, राम वाली
सोल, राम राज, राम राज शुरू होता है,
राम वाली सोल।
सत्य को राम राज कहेंगे
जब शिव बाबा बन जाते हैं,
सत्य को राम राज कहेंगे, तो जो राम राज है किसके द्वारा शुरू हुआ दुनिया में? राम का राज्य किसके द्वारा शुरू हुआ प्रैक्टिकल में? निमित्त कौन होता है? नरसिंह नारायण कौन बनता है?
शिव बाबा,
नरसिंह बाबा, शिव ज्योतिबिंदु नरसिंह नारायण नहीं बनता। नर कौन है? श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाला नर कौन है?
अगर हम राम को नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं वो कहते हैं, तो राम को हम 16 कला तक निमित्त कर देते हैं।
बस गए आप भक्तिवार के चक्कर में, भक्तिवार के चक्कर में।
लेकिन राम तो
सुनो सुनो
16 कला से नहीं ऊपर है।
कृष्ण का जन्म किससे होगा? कृष्ण का जन्म किससे होगा?
कृष्ण का जन्म उससे होगा जो व्यक्ति राम शिव बाबा बन जाए, क्योंकि मुरली में बोला है राम शिव बाबा।
अच्छा, तो कृष्ण को टाइटल मिलेगा, नारायण का टाइटल मिलेगा, सत्युग के कृष्ण को नारायण का टाइटल मिलेगा कौन देगा?
तनधारी वही होगा, तनधारी ये तन से ही कृष्ण भी प्रत्यक्ष होगा,
स्वयं नारायण नहीं होगा,
लेकिन वही कृष्ण फिर नारायण बनेगा, क्योंकि मुरली में बोला है कृष्ण ही नारायण बनता है।
नारायण कैसे
संगम
मुरली बोलती है
संगम युगी कृष्ण नारायण बने,
संगम
ये बलिए
हाँ
संगम युगी कृष्ण नारायण बने।
हाँ तो संगम युगी कृष्ण जो है वही नारायण के बन के सत्यु के नारायण को तो किसने देखा ही नहीं है,
सत्यु नहीं देखा तो क्या हुआ, बुद्धि से चीज समझी जाती है,
लेकिन सत्यु का नारायण जो है
अगर अगर हमने सत्यु को नहीं देखा है तो हम सत्य को मानेंगे, हमने स्वर्ग को देखा ही नहीं तो हम स्वर्ग को मानेंगे नहीं,
नहीं है
हमने शिव को देखा नहीं है तो हम शिव को मानेंगे नहीं, हमने आत्मा को देखा नहीं है तो हम आत्मा को मानेंगे नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसे समझने नहीं जाती है,
जैसे हवा है उसको महसूस करते हैं वैसे महसूस करते हैं ना बाबा।
राम शिव बाबा भी बन जाए, राम नारायण भी बन जाए, मेरे को ये एक ही समझ में,
राम शिव बाबा वो निराकार नाम क्योंकि सत्यु पर नहीं रहता है, जो परमधाम वासी होकर के रहता है वो अलग है, वो उसको राम नाम भी नहीं कहेंगे।
एक अव्यक्तवाणी में आया है कि जितना जितना बुद्धि योग बाप से साथ यहाँ रहेगा उतना उतना 84 जन्मों में भी बाप के साथ तुम नजदीक में रहोगे, ये एक अव्यक्तवाणी में आया है।
ठीक है
तो अगर हम
रामकृष्ण जो साथ
तो मेरा
रामकृष्ण जो है वो साथी हो जाएंगे, रामकृष्ण तुम्हारे साथी हो जाएंगे और शिव बाप निराकारी जो है वो साक्षी हो जाएगा, परमधाम वासी हो जाएगा।
हाँ तो मैं अभी सिर्फ बुद्धि योग किस बाप से लगाऊं, जिस बाप के साथ मेरा 84 जन्म का पार्ट है या जो बाप एक भी जन्म लेता नहीं है जौकर के बाद,
अलग अलग नहीं कर सकते
तो पूरे कल्प में जब वो अलग अलग हो गए तो
संगम युग में दोनों को अलग अलग नहीं करना,
तो मैं
संगम युग में दोनों को अलग अलग करना मानव प्राप्ति से वंचित हो जाना, जो असली प्राप्ति है उससे वंचित हो जाना, ये है हमारी प्रवृत्ति मूल, कौन सी आत्मा और शरीर माना प्रकृति माता, नेचर हमारी माता है और शिव जो है वो पिता है, तो शिव पिता पहले पहले जिस शरीरधारी में आकर के ज्ञान देता है वो शरीरधारी ही वास्तव में एक तरह से आधार हो गया,
जैसे पिंड में आत्मा
इन दोनों को अलग नहीं करना
है, जैसे पिंड होता है ना पेट में,
पेट में तो आत्मा प्रवेश करती है,
तो ऐसे ही पिंड है, यही कि आदमी वो पिंड है उस पिंड में उसने प्रवेश किया तब दोनों की प्रवृत्ति बनी,
अब ये आत्मा है
और ये शरीर, ये आत्मा है तो इधर ये शरीरधारी में शिव ही है, ये हमारे लिए
ये हमेशा इंटेंशन हमारा रहना चाहिए, हम शिव से सुन रहे हैं, हम शिव से दृष्टि ले रहे हैं, हम पतित होने वाले से दृष्टि लेने वाले नहीं है,
इसका मतलब
आधार लिया, ये शरीर का आधार लिया, ये आत्मा
बाबा
प्रवृत्ति हो गई,
इसका मतलब याद करते समय भी वो शिव अभी ये तन में है ये भी अलग अलग नहीं करना है, बस वही शरीर है और इसमें शिव है,
ये भी बुद्धि में है कि राम की आत्मा भी है, ये भी बुद्धि में है कि कृष्ण की आत्मा भी है, तीनों आत्माएं हैं, लेकिन हम किससे पढ़ रहे हैं,
हम किससे पढ़ रहे हैं ये ध्यान में,
हम
शिव से पढ़ रहे हैं,
हम नहीं इब्राहिम पढ़ाने वाला है ना हमें, वो ब्रह्मा पढ़ाने वाला है,
और मेन बात ये है कि हम किसी देदारी से नहीं पढ़ रहे हैं, हम शिव से
पढ़ रहे हैं,
बस
ये हमारा शिव बाबा
बात बस,
अगर ये बुद्धि में रहेंगे बाद में बनेगा संपन्न, अरे हमारे सामने तो संपन्न मौजूद है,
तो अभी वंचित रहेंगे,
अब वंचित रह जाएंगे उत्तर समय तक के लिए, भावना बहुत बड़ी चीज है,
वो सोच थोड़ी सी बदलनी है, कुछ नहीं सोच बदल बनना तो है बाद में, लेकिन जो बाद में बनना है
वो तो बाबा ने बोल दिया ना,
जब देखी जाएगी तब देखी
जाएगी, बाबा ने बोल दिया तुम्हारी जो अव्यक्त स्टेज है निराकारी स्टेज है वो बाप को प्रत्यक्ष करेगी,
बाप को प्रत्यक्ष करेगी, बराबर बराबर,
इसका मतलब अभी 24 घंटे निराकारी स्टेज नहीं है ना, जब टाइम आएगा काम पूरा हो जाएगा अभी हो जाएगा,
प्रजापिता से प्रजापति भी तो बनना ही है ना, अभी
उस तंदारी के लिए कहा
वो
तुम्हारी अव्यक्त स्टेज
है,
तुम्हारी अव्यक्त
स्टेज
को प्रत्यक्ष करेगी,
प्रत्यक्ष करेगी बराबर,
उस व्यक्ति पर
ये तो 100%
रूपांतरित,
मतलब ये हुआ कि एक ही आत्मा जब साकारी होती है तो उसको प्रजापिता का टाइटल मिलता है, साकारी मनुष्य सृष्टि का पिता,
हमेशा ही साकारी
साकारी
वो हमेशा रथ वाला है,
और जब वही आत्मा
राम वाली स्वार्थी
है, जो राम वाली सोल निराकारी बन जाती है तो श्री बाबा बन जाती है।
वो बन नहीं जाती है, बन नहीं जाती है, बाप उनको आप समान बना लेता है।
मतलब शिव राम को बना लेता है,
राम को आप समान बना
अपनी गति दे देंगे।
अपना पुरुषार्थ क्या हो गया?
राम का पुरुषार्थ अपना इतना ही है कि जो 63 जन्म उन्होंने पाठ बजाया है वो सच्चाई को पकड़ करके बजाया है, जैसे यहाँ मुर्गी को पकड़ करके पाठ बजाता है वैसे वहाँ 63 जन्म में भी वो सच्चाई को पकड़ के पाठ बजाता है। झूठ को स्वीकार करने वाले
को स्वीकार नहीं करे।
इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो आत्मा होनी चाहिए जो आद से अंत तक टकराने वाली हो। इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो आत्मा होनी चाहिए जिसका सिर्फ पति पत्नी के रूप में एक से ही संबंध बना हो।
बाबा इनका सवाल का ऐसा जवाब दे सकते हैं जैसे इन्होंने कहा, फिर उसके खुद का पुरुषार्थ क्या है? तो हम यू माने कि जैसे हम हमारा समय दे रहे हैं, जैसा हमारा तन मन धन, ऐसे उस आत्मा ने अपना सब कुछ दे दिया पहले दिन से, ये कहा जा सकते ना बाबा? इनको कहना है कि उसका खुद का पुरुषार्थ क्या है?
हाँ वो तो ठीक है, और जितना गुड़ डालेंगे
तो सबसे जास्ती उसने दिया,
जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, वो तो ठीक है। जितना जो अर्पण में होता है उतना बड़ा
दर्पण में हो जाता है,
उतना बड़ा दर्पण होता
है। वही एक है जिसने शुरू से अंत तक सब कुछ को पूरे समय के लिए दिया, जैसा हमेशा निश्चय पे ही रहा, अनिश्चय पे आए नहीं, वही उसका पुरुषार्थ रहा।
निश्चय बुद्धि
सदैव
सदा
विजय, निश्चित रहा आगे शिव मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस
निशानी
जैसा निश्चिंत। ऐसे कह सकते बाबा जैसे हम कहे ये हमारा पुरुषार्थ है, वो नंबर एक उसने किया, नंबर एक में सबसे जास्ती हाईएस्ट
नहीं, ये मुरली का वाक्य ये तो अव्वल
अनिल भाई का कहना है, फिर उसका पुरुषार्थ क्या? तो जो हम हमारे लिए पुरुषार्थ समझते हैं वो उसने एक नंबर में किया।
मेरे को ये चीज कभी भी समझ में नहीं आती कि राम 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ,
वो तो कलातीत है,
वो तो कलातीत बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, वो तो शिव समान बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, इसीलिए वो शिव समान बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, इसीलिए शिव उसको खींच रहा है।
नहीं नहीं,
ब्रह्मा को क्यों नहीं खींचा शिव ने?
एक बात,
ब्रह्मा को क्यों नहीं खींचा?
एक बात, एक बात, जब बाबा कहते हैं तुम्हें ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो किससे बात करते हैं?
तो फिर वो तो राम वाले से ही बात
कैसे? जब जब बाबा ये भी कहते हैं मुरली में कि वो बात टीचर सदगुरु है, तो वो शिव बैठा ब्रह्मा के तन में और बोल रहा है वह बात टीचर सदगुरु, तो वो राम को इमर्ज करके बोल रहा है।
सदगुरु नहीं होता, सदगुरु मिला अकाल, जो अकाल मूर्त है जिसकी मूर्ति भी है और जिसको काल नहीं खा सकता है, काल शरीर को खाता है, आत्मा खाता है,
शरीर को खाता है,
शरीर को माने कोई शरीर ऐसा दुनिया में है
हाँ।
कि सारी दुनिया को काल खाते हुए देखेंगे
हाँ,
तो लेकिन उस शरीर धारी को काल खाते हुए कोई नहीं देखेगा
हाँ, तो फिर वही तो सदगुरु हुआ ना,
तो वो सदगुरु हुआ ना
हाँ।
तो उस हिसाब से ये सदगुरु का जो पार्ट है वो सुप्रीम ज्योति बिंदु का नहीं है,
वही तो मैं बोल रहा हूँ, ज्योति बिंदु का नहीं है
वो, जब प्रवेश करता है शरीर तब उसका पार्ट,
मैं
हम अभी भी स्वीकार कर सकते हैं।
मैं ये समझता हूँ कि जब राम वाली सोल 100% निराकारी बन जाएगी तो वो बात टीचर सदगुरु
एक ही तन के द्वारा,
एक ही तन के
मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु भी। सदगुरु को दुनिया इतना मानती है कि माँ को नहीं मानेगी, बाप को नहीं मानेगी, टीचर को नहीं मानेगी, लेकिन सदगुरु को वो सबसे आगे रखती है। तो अगर हम उसमें लैप्स कर जाएंगे तो हमें घाटा हो जाएगा, संगति में अंतर पड़ जाएगा।
वही है कि यही मेरा एक बेसिक अंतर है,
वो आपको अंतर खत्म कर दीजिए।
बीबी के समझते हैं कि बिंदी है जो राम के तन में बाप टीचर सदगुरु का पाठ बजा रहा है, और मैं समझता हूँ कि राम वाली सोल की निराकारी स्टेज ही बाप टीचर सदगुरु बन के हमको पार लगाएगी, क्योंकि बिंदी पार नहीं लगाने वाली, बिंदी हमको पार नहीं लगाने वाली, बिंदी हमको पार कहाँ ले जाने वाली है? वो बिंदी तो हमको मुक्ति बार में ले जाने वाली है, हमको पार जाना है इस भवसागर से दूसरे भवसागर में, तो इस भवसागर से दूसरे भवसागर में राम वाली सोल 100% निराकार स्टेज में हमको ले जाएगी, बस ये मेरा बेसिक मानना है।
ये गलत है बाबा, हम ये देखना
ले जाने वाली नहीं है,
कैसे नहीं ले जाएगी? अकाल मूर्त तो वही है
राम वाली, अकाल मूर्त सदगुरु के रूप में शिव जब प्रवेश करता है साकार में तब सदगुरु, उसको हम अलग कर देंगे
हाँ, शिव को कभी हमें अलग नहीं करना,
लेकिन
अलग कर देंगे।
बाबा मैं शिव को अलग कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने राम वाली आत्मा को पहचाना है किस आधार से? मुर्गियों के आधार से पहचाना है, तो जब मैंने मुरलियों को मान दिया तो मैंने शिव को तो मान दे ही दिया, तो मैं शिव को अलग कहां कर रहा हूं राम से? मैंने राम वाली आत्मा को पहचानने का आधार लिया शिव की वाणी। शिव की वाणी को मैं समझता हूं कि ये परमात्मा, ये बिंदु शिव ने।
आपकी बातों में द्वैत पैदा हो रहा है, द्वैत ये पैदा हो रहा है कि अभी आपने कहा, हमने वीरभद्रप्पा का मिसाल दिया कि आज से 8-10 साल पहले वीरभद्रप्पा का नाम का एक कर्नाटक का भाई आया था,
तो
वो ये कहता था कि शिव अलग से कुछ नहीं है, शिव तत्व अलग से कुछ नहीं है, जो राम वाली आत्मा है वो ही, जैसे जैनी लोग समझते हैं, जो राम वाली आत्मा है वो ही पुरुषार्थ करके शिव बन जाए,
तो वही तो
बिल्कुल राम बात।
लेकिन बाबा वही तो अध्याय हो ना, द्वैत तो वो हो गया कि हम शिव को अलग कर रहे हैं, राम को अलग कर रहे हैं, हम दोनों को मिलके जब जोड़ देंगे तो द्वैत कहाँ रहा, वो तो अद्वैत हो गया फिर।
नहीं अद्वैत नहीं, जो परमधाम में रहता है 5000 साल, रुक जाओ, जो परमधाम में 5000 साल रहता है और जो श्री षष्ठी रंग में वरा मंच पर 5000 साल रहता है, सकाया जो एक पहला मूल श्लोक है वेदवाणी का, वो यही है कि ये संसार रूपी सृष्टि पक्ष है, इसमें दो मुख्य पक्षी हैं, एक अभोक्ता है और एक भोक्ता है। माने अभोक्ता को आप निकाल देंगे।
मैं अभोक्ता को कैसे निकाल रहा हूँ?
तो आप कह रहे हैं कि जो वो दोनों एक
ही है। बिंदी अभोक्ता हो नहीं सकता क्योंकि बिंदी को तो सारे कल्प में अपना शरीर है नहीं, अभोक्ता भी राम वाली सोल है, शूटिंग पीरियड के दौरान पूरे संगम युग में राम वाली सोल अभोक्ता।
असोचता कौन है?
राम वाली सोल
असोचता कौन है?
राम वाली सोल जिस दिन 73 में।
अच्छा असोचता कौन
है? चलो वही 73
में आपके समझाने के लिए आपकी बात।
राम वाली सोल जब अपना पार्ट समझ जाता है।
असोचता कौन है?
राम वाली सोल 73 में जब वो अपना पार्ट समझ जाता है कि ये मेरा पार्ट है शिव बाबा बनने का, तो उस दिन से वो असोचता बन जाता है।
नहीं नहीं नहीं, आपका 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 जो है ना,
क्योंकि
आपका अपना मंथन
है,
हमारे से पूछेंगे तो हम ये बताएंगे, ये बिल्कुल रंग बात है, मंथन तो अभी भी जा रही है,
क्योंकि असोचता अगर हम बिंदी को बोलते
हैं, मंथन हुआ 14 रतन निकले, अभी पूरा मंथन हुआ है क्या?
नहीं हुआ।
क्या सब असुरों ने और सब देवताओं ने मिलकर के मंथन का काम पूरा कर लिया क्या?
अरे भाई वो इतना मान लो अंत की बात है, वो
नहीं किया
बाबा। ये मैं ये बताता हूँ, ये ऊपर वाला अंगूठा जो है वो शिव है, नीचे वाली उंगली राम है,
बस वो शिव है, वो राम है,
वो राम है। अब ये शिव की शिव तो बन गई,
ठीक है,
बस मैं तो ये समझाता हूँ, मेरे मेरी मोटी बुद्धि में और बात
नहीं है, बस शिव और राम,
मेरी मोटी बुद्धि में और कोई बात आती
है, शिव और राम
मेरे को ज्ञान आता नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं,
हो गया ना।
हाँ वो तो बोल रहा हूँ बाबा, मैं
हो गया,
मैं तो ये समझा,
ब्रह्मा विष्णु शंकर,
बस। और ये तीन जो है वो मन बुद्धि और संस्कार दे दिया आपने,
ये थोड़ा प्रसंगांतर हो रहा है, इनकी बात जो है इनकी
अलग हो,
क्लियर होनी चाहिए।
नहीं बाबा मेरे को मोटी बात जो
समझ में आया,
तुम बात करते
नहीं, एग्जैक्टली
एक मिनट
राम बोल
बाबा,
एक मिनट, आप आत्मा को शरीर को अलग तो मानते हैं,
दो अलग अलग चीज है,
तो राम की बिंदु आत्मा और शिव की बिंदु आत्मा दो अलग अलग तत्व हैं।
बिल्कुल बिल्कुल,
उनमें एक असोचता और एक सोचने वाला है या नहीं है, आगे जो कुछ बन जाएगा अभी वर्तमान में।
ये बाबा ये टाइटल भी जो है असोचता, नहीं नहीं, ये सोचता असोचता जन्म और अभोक्ता, ये टाइटल भी समय अनुसार है,
समय अनुसार
हम बिंदी को स्वयं को कैसे बोलेंगे बताइए,
वो
बिंदी क्या बिंदी,
वो बिंदी।
अच्छा अंत में जब शिव जयंती होगी, शिव की जय जयकार होगी,
जयंती तो संक्षेत्र में ही हो गई, इसका मतलब आप अद्वैतवाणी को नहीं मानते?
जयंती हुई लेकिन किसके सामने हुई? विश्व के सामने थोड़ी हुई, सारे विश्व के
पहले थोड़े सामने, बच्चा पैदा होता है तो पहले घर वाले पहले घर वालों को पहचान होती है,
तो बोला है,
फिर मोहल्ले वालों को पहचान होती है, फिर सारी दुनिया को पहचान होती है, ऐसे ही शिव बालक की है वो भी प्रत्यक्ष होता है, तो जो सृष्टि की मूल बीज रूप चार आत्माएं हैं वो पहचानती है, इसी तरह फिर वो दायरा बढ़ता चला,
तो वो तो अंत में छोड़ के चली गई,
नहीं वो तो ठीक है, किसी का सदाकाल किसी का पार्ट जो है सदाकाल साथ निभाने का है और किसी का पार्ट सदाकाल पार्ट निभाने का नहीं,
तो जो बीच में छोड़
आज से अंत तक साथ निभाता है उसको प्राप्ति ज्यादा होती है,
तो वो बीच कैसे हुए थे जब वो पहचाने और छोड़ के चले गए और अंत में जिन्होंने साथ निभाया अंत तक
नहीं, मगर बाबा ये भी कहते वो भाई साहब कहते थे, मतलब उन्होंने हाँ, पूरा पहचाना नहीं,
पूरा नहीं पहचाना, फाउंडेशन
पूरा नहीं पहचाना,
फाउंडेशन वो नहीं था जो राम वाली आत्मा का, फाउंडेशन में अंतर
तो जो अंत में शिव की जय जयकार करेगा उसकी महिमा ज्यादा होगी या वो 76 वाले की महिमा ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जो अंत में शिव की जयंती कराएगा उनकी महिमा ज्यादा होनी चाहिए,
ये भी की आदमी जो चार थे उन चार उन तीन बीजों में तो अष्टदेव नहीं, तो क्लियर बात है अष्टदेव हो भी जाता
है। तो एक्चुअल शिव की जयंती तो मनानी अभी बाकी है ना, जब त्रिमूर्ति शिव जयंती जब राम की 100% निराकार स्टेज हो जाएगी और वो इसी स्तन द्वारा
जयंती माना इस सृष्टि पर आ गया, हमारी बुद्धि में ये बैठ जाए कि शिव इस सृष्टि पर जन्म ले गया, जन्म ले गया माना प्रत्यक्ष हो गया, तो कोई के लिए पहले प्रत्यक्ष होगा, कोई के लिए बाद में प्रत्यक्ष, आप कहेंगे बाद में प्रत्यक्ष होगा ऐसे क्यों?
लेकिन शिव जयंती सो कृष्ण जयंती सो गीता जयंती ये तीनों जयंती एक साथ मनाएंगी तब 76 में बोलेंगे या 2010 में बोलेंगे?
ये जब जिसकी बुद्धि में बैठ जाएगी ये गीता का पार्ट है, ये झूठी गीता का पार्ट है, ये सच्ची गीता का पार्ट है, ये सच्ची गीता शिव गीता उससे 1 सेकंड में स्वर्ग बनता है, ये झूठी गीता उसे 2500 वर्ष में ये सृष्टि नरक बन जाती है, बुद्धि में बैठना है।
तो ये पीबीके की दुनिया नरक नहीं बनेगी?
बनती है ना, बनी हुई है।
तो पीबीके की दुनिया
अभी तो और ज्यादा नरक बनेगी,
पीबीके की दुनिया अगर नरक बनेगी,
पीबीके की दुनिया और ज्यादा नरक बनेगी, लेकिन उसमें एक दुनिया ऐसी भी होगी जो नरक के अंदर स्वर्ग का बरसात होगा,
स्वर्ग का नजारा देखेगी, स्वर्ग का नजारा देखेगी।
तुम बच्चे आना जाना करते हो ना, क्यों बोला
आना
जाना
करते, ये बिल्कुल बराबर।
स्वर्ग में एक बार पहुंच गए तो आना जाना क्यों होगा?
स्वर्ग
वो स्वस्थ वाला नहीं, एक बार हम बड़े को नजीर होता है कि
नहीं
देखे, देखे
स्वर्ग शब्द बोले
ही
नहीं,
नहीं
बाबा
नहीं
दुनिया,
नहीं
नया संगठन, नई जब 10 वर्ष की घोषणा की थी तो संक्षेत्र के लिए नई दुनिया की घोषणा की थी, पुरानी दुनिया का विनाश माने नया संगठन स्थापित, तो नया संगठन संक्षेत्र में स्थापन हो गया, उससे भी ज्यादा पावरफुल संगठन
अविस्थापन हो,
क्योंकि दूसरी मूर्ति का कार्यकाल पूरा हो रहा
है, बिल्कुल बराबर।
जब तीसरी मूर्ति का कार्यकाल पूरा होगा तो 9,16,108 की जो नई दुनिया है वो कंप्लीट प्रत्यक्ष हो जाएगी, कंप्लीट उसे कहा जाएगा स्वर्ग। या कृष्ण जहाँ जन्म लेगा जिस माहौल में उसको भी स्वर्ग कहा जाएगा, नरक की दुनिया के बीच।
लेकिन जो नरक में स्वर्ग जो देखने वाले वो ज्यादा भाग्यशाली होंगे,
वही देखेंगे
वो ज्यादा भाग्यशाली,
ज्यादा
भाग्यशाली, बराबर बात। यहाँ तो कोई जरा सा भी वो नहीं है,
ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात जब बोलते हैं,
ब्रह्मा के दिन को ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन करना बनाने वाला कौन, ये मुर्गी ने प्रश्न किया है।
हाँ।
ब्रह्मा की रात को
ब्रह्मा
का दिन बनाने वाला कौन, कोई तो निमित्त होगा।
तो उससे पहले
ज्ञान सूर्य प्रगट
अज्ञान
विनाश, तो प्रगट कब और चंद्रमा कब तक प्रगट?
मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर ब्रह्मा का राज चल रही है अभी तो आगे चल के जब ब्रह्मा का दिन होगा तो वो ब्रह्मा का दिन कौन निमित्त बनेगा, बिंदी शिव बाबा या राम शिव
बाबा? वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है।
कौन सी?
ये संसद 68 से पहले ही बोला ना,
दादा लेख रहा
है, दादा लेख रहा है,
सोल को बोला।
हाँ, वो सोल के लिए बोली तुम्हारी जगदम्बा है,
जगदम्बा है,
क्योंकि सहन शक्ति का पार्ट और किसी ने बजाया नहीं ऐसा,
परंतु स्त्री
माता विशेष गुण है सहन शक्ति का, गुण राज वो पार्ट किसी ने नहीं बजाया, तो वो गुण राज का पार्ट बजाने वाली जो माँ है वो प्रवेश करती है स्त्री छोड़े,
किसी स्त्री चोले में बोला है
चोले में, जिसके लिए दुर्योधन दुशासन टाइटल लेंगे और उसको उसको कोई कब्जे में कर ले, छल
हाँ।
क्षेत्र कपट करके हाँ। अपने बगल में कर ले हाँ। वो बात अलग है
हाँ।
लेकिन
ठीक है, तो वो जगदम्बा पाठ बजा रहे उधर,
वो जो जगदम्बा जो है वो ओरिजिनल पार्ट तब बजाती है जब ब्रह्मा की सोल संपन्न रूप में जगदम्बा को कन्वर्ट करके
तो मतलब अभी कृष्ण की सोल ने माँ जगदम्बा में प्रवेश नहीं किया,
प्रवेश किया
कर दिया है,
प्रवेश
तो
किया
उसकी रात चल रही है,
प्रवेश किया है रात चल रही है, इसलिए महाकाली का पार्ट अभी बजना है।
तो अगर ब्रह्मा की रात चल रही है तो फिर हम बच्चों की भी रात होनी चाहिए,
हम सबकी रात है, सबको निश्चय निश्चय आ रहा
है, सबकी रात
एक के अलावा तो प्रजापिता की रात और दिन नहीं कहा जाता है।
हाँ बराबर, प्रजापिता की रात दिन होती नहीं।
हाँ?
तो जब ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात चल रही है तो रात्रि में भक्ति होगी या ज्ञान होगा?
कुछ ना कुछ भक्ति कहाँ से जरूर होगा,
उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता,
स्वर्ग हो जाए
लेकिन रामा ही नहीं चलेगा।
रात्रि के समय तो टोटल भक्ति होती है, ज्ञान होता नहीं है। मुरली में बोला है कि जब भक्ति चलती है तब रिंचक मात्र भी ज्ञान नहीं होता और जब ज्ञान होता है तब रिंचक मात्र भी भक्ति होती है। तो ये महावाक्य से मेरा मंथन ये चलता है कि अभी फिलहाल टोटल भक्ति चल रही है।
आप जो है दूसरों को क्यों पकड़ते हैं, आप ऊंचते ऊंच को क्यों नहीं पकड़ते, आप प्रजापिता को क्यों नहीं पकड़ते? जिस प्रजापिता के लिए मोटो बोला ऊंचते ऊंच पार्ट है, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। अब दूसरों को देखना नहीं है, हम क्यों दूसरों को देखें, बाप को देखना है, दूसरों को देखना, हमारा माता खराब होता रहे।
मंथन का आचार विचार, अगर हमारा ब्राह्मणों के साथ ज्ञान का लेन देन नहीं होगा तो हमारा
ऐसा
टाइम पास नहीं होता है।
ऐसा ना हो हम ब्राह्मणों के साथ ही घुल मिल जाए और जो मूल है उसको भूल जाए,
एंटरटेनमेंट करें।
मूल तो भूल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जो दिया हुआ मूल का है उसी के ऊपर हम मंथन कर रहे हैं, तो मूल तो हम बीच में रखते हैं।
उसी के दिए हुए मूल के आधार पर इब्राहिम अपनी जनरेशन बनाते हैं, उसी के दिए हुए ज्ञान के आधार पर क्राइस्ट अपनी जनरेशन बनाते हैं, लेकिन जुदा हो जाते हैं।
जुदा हो जाते एक नुक्ते में ही जुदा हो जाते,
दूसरों के साथ ज्यादा अटैच हो जाते हैं, उसके साथ जुदा हो जाते हैं,
एक नुक्ते में ही जुदा हो जाते,
जुदा हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बाप समझने बैठे। जैसे दशरथ भाई,
दशरथ भाई तो
दशरथ भाई अपने आप को बाप समझने बैठ गए ना,
दशरथ भाई तो अपने आप अपने में मुझे हुए।
हाँ अभी
वो तो दो तरह की बातें,
लेकिन जो अलग हुए हैं उन्होंने एक गलती की कि अपने आप को प्रत्यक्ष किया और बाप को छुपाया। यहाँ पे हम जब भी बैठते हैं बाप को ही पहले सेंटर पे रखते हैं कि भाई बाबा ने ये मुरली में कहा है, तो इसका आपका मंथन किया है, आपका मंथन किया है, आपका मंथन किया है, मेरा मंथन किया है, तो क्या वो
ठीक है? लेकिन गुरु नानक अगर कहते हैं एक सदगुरु मेरा का इशारा ऊपर कर देते हैं, है ना? लेकिन जो ज्ञान सुनाया है उस ज्ञान के आधार पर कहीं न कहीं मेच्योरिटी ऐसी है जो अंतर कर देती है, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया जाएगा वो दूसरी आत्मा के ज्ञान से मिलेगा नहीं कभी। ये सिर्फ अव्यक्त वाणी है जो मुरली से बिल्कुल पैरेलल चल रही, कहीं क्रॉस नहीं करती।
बाबा आपने अव्यक्त वाणी का बताया तो मेरे को एक कंफ्यूजन और है कि अव्यक्त वाणी है कृष्ण बच्चे की वाणी, ट्रू गुलजार दादी,
कृष्ण बच्चे की वाणी है जरूर, लेकिन जब वो प्रवेश करते हैं गुलजार दादी में तो उस समय उनकी स्टेज जो है अव्यक्त स्टेज, टॉप मोस्ट अव्यक्त स्टेज,
ठीक है।
जैसे कि जो मूर्तिकार होते थे जिन्होंने भीति चित्र बनाए गुफाओं में, उन भीति चित्रों के आधार पर शास्त्र बने,
शास्त्र बने,
तो वो भीति चित्र ज्यादा सत्व प्रधान हुए या शास्त्र ज्यादा सत्व प्रधान हुए?
ज्यादा सत्व प्रधान,
तो वो कलाकारों की कलाकारी, उस कलाकारी के
वही मज करके बनाए,
वो कलाकारी के अंदर सत्य समाया हुआ
था।
ब्रह्मा की सोल जब गुलजार दादी में प्रवेश होकर जो बोलती है तो इतनी याद की अव्यक्त स्टेज में बोलती है कि भैया बाबा बुलवाता है,
ऐसे
प्रवेश नहीं करता लेकिन बाबा बुलवाता है, ज्ञान की वाणी नहीं बोलता, धारणा की वाणी बोलता है, लेकिन कृष्ण की आत्मा को निमित्त बनाता है,
निमित्त।
तो वो इतनी वाणी क्लियर है कि एक भी मुरली के पॉइंट का क्रॉस ही नहीं करती कहीं, नहीं तो दुनिया में हाँ। दो आदमी जो बोलेंगे कहीं ना कहीं क्रॉस जरूर।
मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मुरली और अव्यक्त वाणी में जो कुछ बोला जाता है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, ये 100%। लेकिन बच्चे की वाणी फिर बाप को क्यों समझानी पड़ती है? हाथ में लेकर
क्या नहीं नहीं कृष्ण की सोल लेने वाली कृष्ण की सोल पढ़ने वाली है जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो टेक्स्ट बुक हाथ में लेता है टीचर जो है उस टेक्स्ट बुक की अर्थ बताता है अर्थ बताने वाला सुप्रीम सोल है पढ़ने वाला जिसको हम पढ़ने वाला कहते हैं वो कृष्ण की सोल है वो प्रजापिता की सोल नहीं है प्रजापिता की सोल के ऊपर पापों का बोझ इतना ज्यादा है कि उसे सिर्फ याद करने से ही पढ़ सकते हैं जन्म जन्मांतर का राजा होगा तो राजा कितने अहंकारी हो चुके कितने पाप कर्म किए होंगे बड़े से बड़े काम ही कांटे ले आता तो माँ बाप कौन हुआ अब सबका बाप है